Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Deranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Shvetashvatara Upanishad, Chautha Adhyay, 19th Mantra Prarambha hai. इस मंत्र में ब्रह्म के अनुपम एवं इंद्रियातीत स्वरूप का वर्णन है। कूटस्थस्य ब्रह्मणः ऊर्ध्वादिषु दिक्षु केनापि अपरिग्राह्यत्वम् अद्वितीयत्वात् केनापि अतुलितत्वम् काल दिगादि अनावच्छिन्न यशो रूपत्वंच। बोल रहे हैं जो कूटस्थ ब्रह्म है, कूटस्थ ब्रह्म होने के कारण ऊर्ध्वादिषु दिक्षु माने ऊर्ध्वादि सभी जो 10 दिशाएं हैं उन किसी भी दिशाओं में किसी के माध्यम से भी केनापि माने किसी भी साधन से अपरि ग्राह्यत्वम किसी भी प्रकार से पकड़ में नहीं आता है, अर्थात वह देश से अनावच्छिन्न है। अद्वितीयत्वात् केनापि अतुलितत्वम अद्वितीय होने के कारण उसकी कहीं पर भी उपमा दी नहीं जा सकती है। जैसा दस अपने से भिन्न कोई व्यक्ति होगा तो उसकी उपमा अपने को अपनी उपमा उसको दे सकते हैं, किंतु यहां तो ब्रह्म एक ही है, दूसरा है ही नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार से उपमा नहीं दी जा सकती है। तीसरा विशेषण देते हैं काल दिगादि अनावच्छिन्नत्वम। काल से भी अनावच्छिन्न यशो रूप वाला है। यश मनी कीर्ति ज्ञान, हम लोगों का जो यश है, ज्ञान है, कीर्ति है, ये सब सीमित है, और उस परमात्मा की उस ब्रह्म की कीर्ति अनावच्छिन्न है, अर्थात सर्वत्र व्याप्त है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। श्लोक का उच्चारण, नैनमूर्ध्वं नतीर्यंच नमध्ये परे जग्रभत नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। नैनमूर्ध्वं नतीर्यंच नमध्ये परे जग्रभत नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। न एनम् ऊर्ध्वं न तिर्यञ्च न मध्ये परि जग्रभत् न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। एनम् न ऊर्ध्वं न तिर्यञ्च न मध्ये परि जग्रभत्। एनम् माने ये जो सामने उपस्थित जो परमात्मा है उसको ऊर्ध्वम न तिर्यञ्च अर्थात ऊर्ध्वम यानी ऊपर की दिशाओं के माध्यम से भी पकड़ नहीं सकते हैं। जैसे शिवजी का वर्णन आया शिव पुराण में, जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को देखने के लिए ब्रह्मा जी हंस के ऊपर बैठकर जाते हैं और नहीं देखते हैं तभी भी बोलते हैं कि मैंने शिवलिंग का अंत देखा। तो शिवजी ने उनको शाप दिया और गाय साक्षी थी उसको भी शाप दिया, आप लोग सब जानते ही हैं। न तिर्यंच अर्थात नीचे की ओर भी जाने पर उसका अंत लगता नहीं है, पकड़ में नहीं सकता है। जैसे विष्णु भगवान वराह रूप लेकर नीचे की ओर गए उनको भी भली भांति समझ में नहीं आया कि ये क्या है। इसी प्रकार ब्रह्म किसी भी दिशा आदि में ग्रहित नहीं हो सकता है। यस्य महद एषः नामः, जिनका महत मनी महान, यस मनी ज्ञान अथवा कीर्ति, यही उनका नाम है। जैसे आजकल सर्वत्र कीर्तों में भगवान के जो मंदिर है, ये भगवान के मंदिर ही उनके यश है, उनकी कीर्ति है, और इसी के माध्यम से हम उसको पहचान सकते हैं, प्रापा सकते हैं। तस्य प्रतिमा न अस्ति, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है। यदि प्रतिमा होती तो उसके लिए कोई उपमा दी जा सकती, जैसे रामचंद्र कृष्णचंद्र आदि उपमा दी जा सकती है, लेकिन इस परमात्मा को किसी प्रकार की उपमा दी नहीं जा सकती है। अब भाष्य देखिए, न एनम इति, एनम प्रकृतम, प्रकृतम का अर्थ करते हैं अपरिच्छिन्न रूपत्वात्, निरंशत्वात्, निर अवयवत्वाच, ऊर्ध्वादिषु दिक्षु कश्चिदपि न परिजग्रभत, परिगृहीतुं न शक्नुयात्। अपरिच्छिन्नत्व उस परमात्मा का रूप है, दूसरा निरंशत्व और तीसरा निर अवयवत्व, इन तीन विशेषणों से युक्त होने के कारण ऊर्ध्वादिषु दिक्षु कश्चिदपि न परिजग्रहत, अर्थात किसी भी दिशा में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। वस्तु जो परिचिन्न होती है वह किसी न किसी दिशा में ग्रहित हो सकती है, पकड़ में आ सकती है। जो अंश होता है तो अंश अंशी भाव जहां होता है, जैसे एक धागा अंश है और पूरा का पूरा कपड़ा अंशी है, तो अंश अंशी भाव जहां रहता है वहां तो पकड़ में आ सकता है। ब्रह्म में अंश अंशी भाव भी नहीं है, इसलिए कहीं पर भी पकड़ में नहीं आता है। निर अवयवत्व अर्थात जो सावयव वस्तु होती है वह अच्छी प्रकार से समझ में आती है, पकड़ में आती है, यानी समझ में आती है ज्ञान के द्वारा, किसी इंद्रियों के आदि के द्वारा, किंतु निरावयव होने के कारण यह किसी भी दिशा में ग्रहित नहीं हो सकता है। तस्य माने तस्य ईश्वरस्य, उस परमात्मा का, ईश्वरस्य का अर्थ करते हैं अखंड सुख अनुभवत्वात्, वह परमात्मा अखंड आनंद अनुभव रूप होने से, एतादृश द्वितीय अभावात, संसार में जो परमात्मा एकमात्र अखंड नित्य निरंतर आनंद अनुभव रूप है, ऐसा दूसरा कोई भी संसार में नहीं है। क्योंकि संसार के जितने भी आनंद होते हैं वे देश काल वस्तु से परिचिन्न होते हैं, इसलिए अनित्य होते हैं, किंतु यहाँ जो परमात्मा का आनंद है अखंड है, नित्य निरंतर है, नित्य आनंद है, इसके समान कहीं पर भी आनंद नहीं है। इसलिए एतादृश द्वितीय अभावात, इस परमात्मा के समान दूसरा कोई भी नहीं है, इसलिए प्रतिमा नास्ति माने उपमा नास्ति, जो सजातीय कोई भी नहीं होने के कारण वो किसी से भी समतोलित नहीं हो सकता है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती है, अर्थात किसी भी प्रमाण से उसको हम समझ नहीं सकते हैं। समझने के लिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है, लेकिन प्रमाण तभी काम देते हैं कहीं पर एक दूसरे से सजातीय वस्तु आदि होती है, तो अनुमान का विषय अलग, उपमान का विषय अलग, यहाँ पर कारण कार्य अलग अलग होते हैं। यहाँ पर यही बताने के लिए तात्पर्य है कि प्रतिमा नास्ति मनि उपमा दे नहीं सकते हैं। यस्य नाम महद यशः, यस्य ईश्वरस्य नाम अभिधानम, अभिधान मनि संज्ञा नाम, जिसको हम किसी नाम से पुकारते हैं वही अभिधान है। उस परमात्मा का अभिधान मनि नाम क्या है, तो बोलते हैं महद यशः मनी महान यश, अर्थात महदिगादि अनावच्छिन्न सर्वत्र परिपूर्ण यश कीर्ति, अर्थात जिसकी किसी भी दिगादिशाओं से अपरिमित ऐसी जो पूर्ण रूप से कीर्ति है। अब विश्व के लिए बोलते हैं, विश्व में क्या विषय है, ईशस्य इंद्रियादि अभिषेताम प्रत्येक रूपताम तद ऐक्य ज्ञानात मोक्षताम च, यहाँ पर भी ईश्वर के बारे में कहते हैं। ईश्वर कैसे हैं, इंद्री अविषय है, और दूसरा बोलते हैं प्रत्यग रूपता, जो परिपूर्ण बाहर आदि है उसको ब्रह्म बोलते हैं, और सभी के भीतर आत्म रूप से है उसको प्रत्यगुरु बोलते हैं। और तद ऐक्य ज्ञानात् मोक्षताम चाह, अर्थात बाहर बृहद रूप से ब्रह्म, भीतर आत्मा, इन आत्मा और परमात्मा का जो ऐक्य ज्ञान होता है, उस ऐक्य ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। उच्चारण मंत्र का, न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदा हृदिस्थं मनसाय एनम् एवं विदुरमृतास्ते भवन्ति। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदा हृदिस्थं मनसाय एनम् एवं विदुरमृतास्ते भवन्ति। न संदृशे तिष्ठति रूपम् अस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चन एनम् हृदा हृदिस्थं मनसा य एनम् एवं विदु अमृतास्ते भवन्ति। अस्य रूपम् संदृशे न तिष्ठति, इस ब्रह्मा का जो रूप है, स्वरूप है, वह संदृशे माने दृष्टि के सामने न तिष्ठति, अर्थात वह दृश्यत्व दृश्य कोटि में नहीं आने के कारण दृष्टि के सामने रुक नहीं सकता है। जो पदार्थ दृश्य होता है वह दृष्टि के सामने आ जाता है, किंतु यह ब्रह्म दृश्य नहीं होने के कारण दृष्टि के सामने नहीं है, अर्थात साक्षी भाष्य नहीं है। न चक्षुषा पश्यति कश्चन एनम् एनम् परमात्मानम्, कश्चन चक्षुषा न पश्यति, अर्थात वह परमात्मा कोई बाहर वस्तु होता तब इंद्रियों के द्वारा देख सकते, अर्थात आभास भाष्य होता, किंतु वह इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं दे सकता है, माने इंद्रियों का वहाँ निषेध है, इंद्रियां काम नहीं करती है और साक्षी भी काम नहीं करता है। साक्षी भाष्य और आभास भाष्य दोनों का भी निषेध किया जा रहा है। आभास भाष्य का अर्थ होता है बाहर की जो वस्तु है उस वस्तु को, स्थूल वस्तुओं को, दृश्य वस्तुओं को बाहर के इंद्रियों के द्वारा समझ सकते हैं, उनका ज्ञान कर सकते हैं। जैसे घटम अहम पश्यामि, घट को मैं देखता हूँ, तो इस घट ज्ञान का जो अभिमान है अहम को, अहम जो है वही चिदाभास है, उस चिदाभास को ही भाष्य बोलते हैं और इस आभास बोलते हैं, उस आभास के द्वारा ये ज्ञान हो रहा है। तो आभास्य भाष्य स्थूल वस्तु हो, दृश्य हो, इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होती है, उसको बोलते हैं आभास भाष्य। और जो वस्तु सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, जैसे सुषुप्ति है, स्वप्न है, हृदय में रहने वाले सुख दुख इच्छा द्वेष आदि है, ये राग द्वेष आदि है, ये सभी के सब अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ हैं। इन सूक्ष्म पदार्थों का दृश्य होने पर भी ये साक्षी से भाष्य है, किंतु वह परमात्मा साक्षी से भाष्य नहीं है। और कहाँ रहता है ऐसा परमात्मा? हृदयस्थम, अर्थात सभी के हृदय में रहता है। प्राप्त करने का साधन क्या है? तो दो बोलते हैं, हृदय और मनसा। हृदय का अर्थ होता है भक्ति युक्त हृदय से, और हृदय का अर्थ पूर्व में भाष्यकार ने कहा, रिहरणे धातु से हृद बनता है। मंत्र हृदय में सभी प्रकार की जो बाहर की वृत्तियां हैं वह वृत्ति शून्य हो जाती है, समाधि अवस्था होती है, उस समाधि अवस्था के द्वारा भी उसको प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा साधन मानसा, निर्मल मन के द्वारा। छल कपट छिद्र न भावा, निर्मल जन सोम हुई पावा। जैसे रामायण में आता है कि निर्मल अंतकरण वाला जो होता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार राम जी सभी वानर सेनाओं को कह रहे हैं विभीषण के प्रति। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी यही बताते हैं कि श्रुति माता बताती हैं कि निर्मल जो अंतकरण हो तो उसके द्वारा जान सकते हैं। ये एनम विवम विदु, ये बहुवचन है, अर्थात जो साधक लोग हैं इसको एनम में एनम मने इस परमात्मा को इस ब्रह्म को एवं मने इस प्रकार विदु मंजी जानते हैं अर्थात जानते हैं कैसे जानते हैं अपरोक्ष रूप से मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार जानते हैं तब ते अमृता भवंती अमृत रूप प्राप्त करते हैं अमृता का अर्थ होते हैं अमरण धर्म अर्थात अविद्या बंधन से मुक्ति अविद्या बंधन से मुक्ति होती है उनकी अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म रूप को प्राप्त करते हैं इस प्रकार एवं मंत्र का अर्थ हुआ न संदृशे इति अस्य प्रकृति है ईश्वरस्य रूपम इस प्रकृति जो परमात्मा का वर्णन चल रहा है इस परमात्मा का जो रूप है स्वरूप है रूपादि रहित है अर्थात रूपादि गुणादि रहित होने के कारण निर्विशेषम जो रूपादि गुणों से युक्त होता है तो उसको सविशेष बोलते हैं ये रूपादि गुणों से रहित होने के कारण प्रकृत परब्रह्म निर्विशेष रूप है और स्वप्रकाश अखंड सुख अनुभव स्वरूप है उसका रूप स्वप्रकाश और नित्य आनंद रूप है ऐसा जो रूप है संदृशे मन चक्षुरादि ग्रहण योग्य प्रदेशे न तिष्ठति उसका अखंड अनुभव रूप स्वरूप होने पर भी किसी नेत्रों के द्वारा उसको ग्रहण करते कर नहीं सकते हैं क्योंकि नेत्रादि जहाँ जाते हैं जिस प्रदेश में जाते हैं उस प्रदेश में वह रह नहीं सकता है इंद्रियों का प्रदेश बाहर है और बाहर वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म परमात्मा रह नहीं सकता है तद विषय न भवति इति अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं होता है इंद्रिय गोचरत्वात् क्योंकि वह इंद्रिय अगोचर होने के कारण इंद्रियों का विषय नहीं है प्रकृतम चक्षु रीति उपलक्षणम एक चक्षु उपलक्षण होने के कारण सर्व इंद्रिय रूपी कश्चन कोपी न पश्यति तद विषयतया ग्रहितुम न शक्नुयात अर्थात एक इंद्रिय बोलने चक्षु इंद्रिय बोलने पर सब वो इंद्रियों का उपलक्षण होता है इसलिए जितनी भी इंद्रियां हैं किसी भी इंद्रियों के माध्यम से वह ग्रहण नहीं किया जा सकता है श्रुति माता बोलती है कि इन उपनिषद में यह चक्षुषा न पश्यति एन चक्षुषी पश्यति अर्थात यह चक्षुषा न पश्यति जो चक्षु के द्वारा हम समझ नहीं सकते हैं मानी जिसको चक्षु देख नहीं सकती है किंतु एन चक्षुषा पश्यति जिसके माध्यम से चक्षु देखती है अर्थात स्वयं चक्षु में इतनी शक्ति नहीं है कि उसको देख सके किंतु चक्षु अपने विषयों को देखने के लिए उसी का सहयोग लेती है और उसी के माध्यम से ये बाहर देखती है इत्यादि श्रुति है हृदा शुद्ध बुद्धिया एतद व्याख्यातम शुद्ध बुद्धि के द्वारा ये इसका व्याख्यान हुआ मनसा इति मन के द्वारा मनी शुद्ध मन के हृदयस्थम हृदय आकाश गुहास्तम प्रत्यक्षतया तत्र अवस्थितम हृदय रूपी गुफा में प्रत्यक्ष रूप से सभी के आत्मा रूप से अवस्थित है उसको कौन जानते हैं ये साधन चतुष्टयादि युक्ता संन्यासिनः योग्य अधिकारिणः एनम प्रकृतम ब्रह्मात्मानम एवं इत्तम ब्रह्म अहम अस्मि इति अपरोक्षेण विदु बोलते हैं मूल में ये विदु है तो ये का अर्थ करते हैं जो साधन चतुष्टय आदि युक्त योग्य अधिकारी सन्यासी लक्षण से युक्त हैं यही लोग एना एनम मनी प्रकृत ब्रह्मात्मानम इस प्रकृत ब्रह्म को ही इत्तम मनी अहम एवं इत्तम एवं का अर्थ करते हैं इत्तम इस प्रकार कैसे ब्रह्म अहम अस्मि इति अपरोक्षण मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार अपरोक्ष करते हैं इस प्रकार विदु जानंती ते जानंती ते जानने के बाद में उनकी क्या महिमा होती है ते अपरोक्षी करण महिमना अमृता भवंती फल क्या होता है जानने का तो अपरोक्ष साक्षात्कार करने की महिमा से वे लोग सब अमृता भवंती माने अमरण धर्माण भवंती अर्थात मरण हेतु अविद्यादे हे तत्व ज्ञान अग्निना दग्धत्वात् पुनः देहांतरम न भजति इत्यर्थः अमरण धर्माण भवन्ति मरण का जो कारण है अविद्या उस अविद्यादि से रहित होते हैं क्योंकि अविद्या जो है वह तत्व ज्ञान अग्नि के द्वारा जल के भस्म हो जाती है और एक बार अविद्या चली जाती है तो पुनः देहांतर की प्राप्ति नहीं होती है क्योंकि देह अविद्या के कारण
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम होता है और यहाँ पर अविद्या समाप्त होने के कारण यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम ये स्थिति बनती है। ओम शांति शांति।